उत्पत्ति अध्याय 11। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उत्पत्ति 11:1। संभवतः इब्रानी भाषा, क्योंकि उत्पत्ति के पहले के विवरण में लोगों के नाम इब्रानी या इब्री भाषा में था और उनके अर्थ भी इब्री होते थे, और इसलिए मूल भाषा संभवतः इब्रानी भाषा ही थी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। उत्पत्ति 11:2-3 पद। अब ये एक दिलचस्प जानकारी है, क्योंकि ये दिखाती है कि जल प्रलय के कुछ ही समय बाद उनके पास ईंटों को पकाने के भट्टे थे और अपने घरों को पत्थर से बनाने के बजाय वे इस स्थिति तक आगे निकल गए थे कि ईंटें बनाकर पकाने के लिए भट्टों में रखते थे, वे उन्हें आग में भली भांति पकाते थे। अतः कच्ची ईंट से मकान बनाने के स्थान पर वो पकी हुई ईंटों से मकान बनाते थे। ये आश्चर्य की बात तो लगती है, पर पवित्र शास्त्र बाइबल बता रही है कि वे आग में पकी ईंटों और मसाले से अलग अपने मकान और मीनार बना रहे थे। निनवे नगर, बेबीलोन नगर, निम्रोद के समय में ही पकी हुई ईंटों से बनाया जाना आरंभ हो गए थे। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। उत्पत्ति 11:4। अब परमेश्वर की आज्ञा वास्तव में ये थी कि पृथ्वी में भर जाओ, इसलिए ये काम जो वे लोग कर रहे थे वो वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा को उलट देने जैसे काम था। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े, आओ एक साथ मिल जाएं, आओ इस क्षेत्र में एक साथ बस जाएं, हम सब यही एक साथ रहें कि पृथ्वी पर न फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। उत्पत्ति 11:5। अब पुनः हम परमेश्वर की गतिविधियों का मानवीय रूप से वर्णन कर रहे हैं कि मानो परमेश्वर उतर रहा था और उन सब कुछ को देख रहा था। वास्तव में परमेश्वर सर्वव्यापी है। जबकि उन्होंने गुम्बद और नगर बनाने का विचार ही किया था, परमेश्वर तभी से सब कुछ जानता था। दूसरे शब्दों में वो उनकी गतिविधि को ध्यान से देख रहा था। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम आरंभ किया, और अब जो कुछ वो करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। उत्पत्ति 11:6। वे एक धर्म तंत्र का विकास कर रहे थे। अति संभव है कि परमेश्वर ने आकाश में मूल रूप से सितारों, तारामंडल को चिन्हों के लिए रखा था, और सुसमाचार वास्तव में राशि चक्र में दिया गया था। परंतु जैसे कि शैतान ने हमेशा ही परमेश्वर की बातों को तोड़ मरोड़ कर उनका गलत अर्थ लगाया, इस कारण वो मूल संदेश जो परमेश्वर ने आकाश में युगों के लिए अपनी योजना पूरी करने हेतु रखा था, उसको शैतान ने दूषित कर दिया, बिगाड़कर आधुनिक कहा जाने वाले ज्योतिष शास्त्र बना दिया, जो उस काल विशेष में बाबेल में आरंभ हुआ, जहां वे इस गुम्बद या मीनार को एक वैद्यशाला के रूप में बना रहे थे कि लोग तारामंडल को आकाश में देख सके। परंतु यह नितांत संभव है कि मूल रूप से वहां सितारों में सुसमाचार निहित था, अर्थात मनुष्य के लिए परमेश्वर का संदेश उन तारों में विद्यमान था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ज्योतिषी जो पूरब से बालक यीशु को ढूंढने आए थे, वे आकाशीय तारामंडल के चिन्ह सटीक रूप से पढ़ रहे थे। हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। वे उन चिन्हों को जिन्हें परमेश्वर ने आकाश में रखे थे सही रीति से पढ़ने में सक्षम थे। अब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आकाश में सितारों को चिन्हों एवं मौसमों या ऋतुओं को जानने के लिए रखा है और इसकी अत्यंत संभावना है कि वहां तारों में परमेश्वर का संदेश था, परंतु उसे आज के आधुनिक ज्योतिष शास्त्र में उलट पलट कर दिया गया। और ये फेरबदल उस समय आरंभ हुई थी जब मनुष्य ने अपने जीवनों पर परमेश्वर के प्रभाव की ओर देखते रहने के बदले तारामंडल अर्थात नक्षत्रों की ओर देखना आरंभ कर दिया। जैसा कि आजकल के ज्योतिषी तारों ग्रहों की अवस्थिति से मनुष्य का भविष्य फल बताया करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में ज्योतिष शास्त्रियों को, ग्रहों को देखने वालों को, मासिक शकुन विचारने वालों को तुच्छ कहता है, अर्थात उनको जो तारों के प्रभावों एवं शक्ति से अपने जीवनों के संचालन लाभ इत्यादि को गिनते हैं। परमेश्वर यशिया की भविष्यवाणी में तो इसके विरुद्ध बड़े कठोर शब्दों में बोलता है, परंतु ये एक प्राचीन पुरातन प्रथा है जिसे आज व्यापक उपयोग में लाया जा रहा है। जन्म पत्रियों, जन्म कुंडलियों, नक्षत्रों के प्रभाव, अंकों के प्रभाव, तारों एवं अन्य ग्रहों के प्रभाव और कंप्यूटर आपका भविष्यफल बता देगा आदि। परंतु इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरंभ में परमेश्वर ने विशुद्ध रूप से तारामंडल को दिशा निर्देशन एवं चिन्हों के रूप में ठहराया था कि वे परमेश्वर का सच्चा संदेश दें, परंतु समय बीते इसे लोभ के निमित्त बदला दिया गया कि मनुष्य गलत फायदा उठाए। अतः परमेश्वर ने इस गुम्बद के निर्माण किए जाने को देखा, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन, इब्रानी बालेल अर्थात गड़बड़ पड़ा। उत्पत्ति 11:7-9 पद। यहाँ पद में बेबीलोन शब्द आया है, अंग्रेजी में बाबेल तथा इब्रानी में बालेल, अर्थ एक ही है, गड़बड़। ये बारबेरियन अर्थात बर्बर शब्द के समान है जो यूनानी में है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बर्बर। जो यूनानी नहीं बोल पाता था उसे बर्बर या असभ्य समझा जाता था। अब बर्बर शब्द की ध्वनि ही ये बताती है कि कुछ गड़बड़, घोटाला, हिंसक, क्रूर, गवारू, कर्कश बात हो रही है। इसलिए वे जो यूनानी नहीं बोल पाते थे उन्हें गवारू, असभ्य, बर्बर समझा जाता था। इसका मतलब केवल ये है कि वे जो सभ्य भाषा यूनानी के बदले कोई और भाषा बोलते थे बर्बर समझे जाते थे। और इसी से हमें अंग्रेजी का बारबेरियन मिला, परंतु सीधे अर्थ में कहें तो असभ्य या गड़बड़ शब्द के लिए बाबेल या बालेल शब्दों का या फिर बेबीलोन, बाबुल शब्द निकल कर आए हैं। ये एक ध्वनि की नकल उतारना है जो समझी न गई हो। बाबेल एक रूप में बर्बर के समतुल्य है जिसे गड़बड़ी का समान रूप कहा जाता है, जिसे समझा ना जा सके। ये एक उलझन पैदा करने वाला शब्द या समझ की कमी का अर्थ। इसलिए उन्होंने उस स्थान का नाम बाबेल, बाबुल, बालेल कुछ भी बोले रखा, जिसका अर्थ होता है गड़बड़। क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वही डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उत्पत्ति 11:9। इस समय तक लोगों की एक ही भाषा थी, वे सब एक भाषा या बोली में बातें करते थे, पर अब परमेश्वर ने एक आश्चर्य कर्म किया, उसने उनकी भाषा या बोली अनेक तरह की भाषाओं या बोलियों में बदल दी। कहने का तात्पर्य है कि अनेक भाषाओं का विकास हुआ। अब भाषाओं के बारे में दिलचस्प बात यह है कि बहुत बार हम अपनी हिंदी भाषा के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम इसी को बोलते हुए बड़े हुए। ये बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सुंदर भाषा है। इसका उद्गम पुरानी यूनानी के निकट की संस्कृत भाषा से हुआ और इसमें महाकाव्य और वृहत ग्रंथ लिखे गए। इसलिए हम सोचते हैं कि वे जो पुराने जमाने के थे, आदिम भाषा बोलते थे, वे पाषाण युग की सभ्यता की पुरातन बोली बोलते थे। वे असभ्य थे, उनकी भाषा असभ्य किस्म की थी, जबकि हम सुसंस्कृत हैं, क्योंकि हमारे पास हिंदी भाषा परिष्कृत रूप में है, परंतु उनकी भाषा अपरिष्कृत थी। ऐसा ही यूनानी, अंग्रेजी, लतीनी, अरबी इत्यादि भिन्न भिन्न संस्कृतियां एवं सभ्यता वाले लोग भी अपनी अपनी भाषा को उत्तम एवं सभ्य समझते हैं। हम अपनी भाषा को उच्च कोटि की बताते हैं। हम सोचते हैं कि उनकी भाषा तो बड़ी असभ्य रही होगी, परंतु सत्य तो ये है कि अनेक प्राचीन सभ्यताओं की भाषा अत्यधिक जटिल रही थी और इस कारण आदिकालीन सभ्यता में रहे लोगों की भाषाओं का अनुवाद करना भी एक कठिन काम है, क्योंकि स्वर एवं व्यंजन एवं व्याकरण की समस्या उठ खड़ी होती है। पर भाषा वैज्ञानिकों ने प्राचीन शिलालेखों को पढ़ने के कई तरीके ढूंढ निकाले थे, तभी तो हमारे पास पाषाण युग की सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारियां हैं। पर इन भाषाओं के अनुवाद उतने सरल नहीं थे। आप सोचते हैं, ओह, एक भाषा की दूसरी भाषा में अनुवाद करना सरल काम है, पर आपको मालूम ये उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। अब मान लीजिए कि आप इस वाक्य का अनुवाद अपनी भाषा में कर रहे हैं, वो पुरुष चर्च गया। अब यहाँ आपको पुरुष शब्द का भाव अर्थ जानना होगा, क्योंकि उनकी भाषा में पुरुष शब्द के कई भाव अर्थ होते थे। उदाहरण, एक पुरुष जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, दूसरा वो पुरुष जिसे आप जानते तो नहीं परंतु पहचानते आवश्यक है। ये भी था कि यदि आप उस पुरुष को पसंद करते हैं तो उसका भाव अर्थ अलग होगा और यदि नहीं तो उसका भाव अर्थ अलग। इसी प्रकार सम्मानित पुरुष या एक साधारण पुरुष आदि। इस प्रकार उनकी भाषा में पुरुष के लिए कम से कम 20 शब्द होते थे। इस प्रकार अतः आपको उस व्यक्ति विशेष के बारे में पूरी पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी कि आपको सही शब्द का प्रयोग करने में आसानी हो। अब क्रिया शब्द गया को ले लीजिए। क्या वो जीवन में एक ही बार चर्च गया था, या वो कभी कभी चर्च गया था, या क्या ये उसका दैनिक अभ्यास था, या वो कभी चला जाता था? इस प्रकार क्रिया शब्दों में भी अनेक भाव थे और अंत में आप हार कर हाथ उठा देते हैं कि ये बड़ा कठिन काम है। मेरा एक मित्र है जो पनामा क्षेत्र की कोको भाषा में मरकुस रचित सुसमाचार का अनुवाद कर रहा था, जब वो यीशु के उस वृत्तांत का अनुवाद कर रहा था जिसमें उसने मिट्टी में थूका और उस मिट्टी को अंधे मनुष्य की आंखों पर लगाकर उससे कहा कि वो जाकर शीलो के कुंड आंखें धो ले। तब उस आदिवासी ने जो उसका सहायक था पूछा, उसने थूका कैसे था, क्योंकि थूकने के अनेक तरीके हैं। अंग्रेजी में तो थूकने के लिए एक ही शब्द है, परंतु उनकी कोको भाषा में थूकने के अनेक शब्द है। आप कौन सा शब्द काम में लें? तब उसने पूछना आरंभ किया, क्या उसने मंत्र पढ़कर थूका था या मिट्टी को हाथ में लेकर थूका फिर उसे साना, या उसने जमीन पर थूक के उसको गीला किया, क्योंकि थूकने के हरेक तरीके के लिए उस भाषा में एक अलग शब्द था। हम तो इस बारे में कुछ नहीं जानते। अतः देखिए भाषाओं में कैसी जटिलता होती है। ये एक रोचक बात है कि किसी सभ्यता में, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, विचारों में आदान प्रदान के लिए बड़े कठिन तरीके हैं। वे चाहे आज की तुलना में असभ्य ही क्यों न माने जाएं, विचारों के आदान प्रदान में उनकी भाषा अत्यधिक विकसित है। वे आवाजें निकालें, लय में बोलें या जैसे भी करें, अपने विचारों को भली भांति समझा देते हैं। ये मनुष्य का एक विशेष गुण है जो उसे जानवरों से अलग करता है। जानवरों के आदान प्रदान के लिए ऐसी कोई जटिल भाषा नहीं है। इसलिए मनुष्य चाहे कैसी भी प्राचीन सभ्यता का रहा हो, उसके पास अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक ही भाषा रही है। इस प्रकार यहाँ भाषाओं के अलग अलग हो जाने का उल्लेख किया गया है। मूल भाषा समूहों के अलग हो जाने के बाद उन मूल भाषाओं में भी अनेक परिवर्तन आए। एक ऐसी भाषा का भी विकास हो गया जिसे रोमांस की भाषा कहते हैं, जो भावनाओं का प्रदर्शन करती है। हम ये भी देखते हैं कि अनेक भाषाओं में समानता होती है, जैसे मणिपुर का निवासी बंगाली पढ़ लेते हैं और आंध्र प्रदेश का निवासी कर्नाटक की भाषा समझ लेते हैं। अतः हम देखते हैं कि आज की समस्त भाषाओं के स्रोत मूल भाषाओं में हैं। इन मूल भाषाओं को परमेश्वर ने उत्पन्न किया था और उसके बाद मनुष्य भाषाओं के आधार पर विभाजित हो गया और पृथ्वी पर फैल गया। अब हम इब्राहिम तक आकर रुक जाते हैं, क्योंकि इसी ओर हमारे वृत्तांत को आगे बढ़ना है। शेम की वंशावली ये है, उत्पत्ति 11:10। अब यहाँ पुनः शेम की पीढ़ियों को दोहराया है, परंतु निश्चित रूप से वो इब्राहिम की बढ़ रही है। जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उसने अर्पशद को जन्म दिया और अर्पशद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, उत्पत्ति 11:10-11। इस प्रकार वो लगभग 600 वर्षों तक जीवित रहा। जब अर्पशद 35 वर्ष का हुआ, तब उसने शेलाह को जन्म दिया, उत्पत्ति 11:12। और हम पाते हैं कि उसने एरेब को जन्म दिया, और इस प्रकार हम नीचे की ओर अर्थात इब्राहिम की ओर जा रहे हैं। इसलिए आइए पद 26 को देखें। जब तक तेरा 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा इब्राहिम और नाहोर और धारान उत्पन्न हुए, उत्पत्ति 11:26। अब चाहे हो या ना हो, क्रम यही है जिनमें उनके जन्म हुए थे, इससे अधिक हम नहीं जानते। जब इब्राहिम का जन्म हुआ तब तेरा कितने वर्ष का था, हो सकता है कि वो उसका 3रा पुत्र था। ये जानने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं। जब वो 70 वर्ष का था तब उसके ये 3 पुत्र हो चुके थे, इब्राम, नाहोर और हारान। इनके जन्म के बाद भी वो बहुत वर्षों तक जीवित रहा था। तेरा की वंशावली ये है, तेरा ने अब्राम, नाहोर और हारान को जन्म दिया, और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राम और नाहोर ने स्त्रियां ब्याह ली, उत्पत्ति 11:27-29। इस प्रकार उनके भाई हारान ने विवाह किया और उसका एक पुत्र लूत उत्पन्न हुआ, परंतु हारान जल्दी मर गया। सच तो ये है कि मृत्यु से पूर्व उसके कई पुत्रियां भी हुई थी, और अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम साराई और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। ये उस हारान की बेटी थी। उत्पत्ति 11:29। इस प्रकार उसने अपनी भतीजी से विवाह किया जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। साराई तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। 13 अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू साराई जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी। उत्पत्ति 11:29-31। इस प्रकार हारान के मर जाने पर उसके पुत्र लूत को अब्राम ने एक प्रकार से गोद ले लिया था, क्योंकि अब्राम की अपनी कोई संतान नहीं थी। अर्थात इब्राहिम ने लूत को अपना धातक पुत्र बना लिया और उसे अपने साथ ही यात्रा पर ले गया। इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल। उत्पत्ति 11:31। अब ये कसदियों का ऊर नगर था। इस क्षेत्र में जहां झूठे धर्म तंत्र जैसे सर्वेश्वरवाद और बहुदेववाद और इसी प्रकार के निकायों का विकास होना आरंभ हो गया था और भ्रष्ट धर्म तंत्र विकसित होने लगे थे, इसलिए वे कसदियों के ऊर से निकल पड़े। कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। उत्पत्ति 11:31। अब ये सच्चाई कि वे ऊर नगर से कनान जाने को निकले, इस बात का संकेत देती है कि आरंभ में ये अब्राम का पिता ने परमेश्वर की बुलाहट को सुना था कि इस क्षेत्र को छोड़ दे जो कि धार्मिक रूप से प्रदूषित हो चुका था और एकदम नए क्षेत्र में जाएं। परंतु जब वे हारान में पहुंचे तो 13 वही बस गया। जब 13 205 वर्ष का हुआ तब वो हारान देश में मर गया। उत्पत्ति 11:32। आप ध्यान दें तो ये पद नए नियम के उस वृत्तांत से मेल नहीं खाता है जिसमें स्तिफानूस महासभा के सामने अपने भाषण में बता रहा है कि जब परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया तो वो कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। प्रेरितों के काम का अध्ययन। जबकि परमेश्वर ने उसे कहा था कि वो अपने देश से निकलकर इसराइल को जाए, फिर यहाँ उत्पत्ति में कहा गया है कि जब 13 मर गया तब इब्राहिम कनान को गया। अब जब आप इन सब लोगों की आयु की तुलना करते हैं तो ज्ञान होता है कि 13 205 वर्ष जीवित रहा, परंतु इब्राहिम अपने देश को छोड़ चुका था। जब इब्राहिम का जन्म हुआ था तब 13 70 वर्ष का था और जब इब्राहिम ने अपना देश छोड़ा तब वो 75 वर्ष का था। 75 और 70 मिलाकर 145 वर्ष होते हैं और तब भी वो 205 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार यहाँ अंक गणित के हिसाब में असंगति है। इसका हल या उत्तर क्या होना चाहिए? दो संभावित सुझाव हैं। एक हो सकता है कि अब्राम पहलौटा न जन्मा हो, उन सब के नाम सूची में क्रम से न दिए जाकर पुत्रों की वरीयता के क्रम में दिए गए हो और वास्तव में इब्राहिम का जन्म उनके बहुत वर्षों बाद हुआ हो। दूसरे शब्दों में 70 वर्ष और हो सकता है कि जब वो 70 वर्ष का था तब हारान का जन्म हुआ और इब्राहिम के जन्म के समय ये उसकी आयु नहीं बताता है। ये एक संभावना है। इस प्रकार इब्राहिम बाद में जन्मा बच्चा हो और इस प्रकार निश्चय ही जब वो 75 वर्ष का था तब उसका पिता 205 वर्ष का था। ये एक अति निकट संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि स्तिफानूस आत्मिक भाव में बोल रहा होगा कि जब उसका पिता मर गया। आपको स्मरण होगा कि एक जवान ने यीशु के पास आकर कहा था, मैं तेरे पीछे हो लूंगा पर पहले मुझे अपने पिता को गाड़ने दे। और यीशु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू मेरे पीछे हो ले। मती 8:21-22। अब पहले मुझे अपने पिता को गाड़ने दे, एक सर्व सामान्य बात थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उसका पिता मर गया था। ये बात भी नहीं थी कि यीशु एक पिता के लिए अपमान या निरादर दिखा रहा था जो कि मर गया था, पर ये उस जमाने में कहने का एक ढंग था। किसी व्यक्ति के ये कहने का अर्थ वास्तव में ये होता था, ये नहीं कि मैं अभी ये करना चाहता हूं, परंतु जब तक मेरा पिता मर न जाए। एक आगे के समय की बात कि जब पिता अपना पूरा जीवन जीकर मर जाएगा, तब उसे गाड़ कर तेरे पीछे हो लूंगा। ये एक आगे आने वाली बात को कहने का एक तरीका होता था कि उसे मानो अभी करना है। हो सकता है कि ये बात कहे जाने के समय उसका पिता पूरी तरह स्वस्थ हो। हो सकता है कि आगे वो 50-60 साल और जिए, पर ये एक टलने या विलंब करने का एक सामान्य ढंग था। अब यीशु द्वारा उपयोगी किए जाने वाले वाक्य या अर्थ को जिस रूप में ये आम बात थी, उसी रूप में स्तिफानुस भी उपयोग कर सकता था, ठीक उसी भाव में। और ये कि जब वे हारान में आए तब तेरा आत्मिक रूप से मर गया, क्योंकि वास्तव में तो तेरा ने स्वधर्म त्याग करना आरंभ कर दिया था और वे झूठे ईश्वरों का उपासक बन गया था। इसलिए यह ऐसा हो सकता है कि वो तेरा की आत्मिक मृत्यु, आत्मिक जीवन के त्यागने को बता रहा है। और उस समय जब तेरा आत्मिक रूप से परमेश्वर के लिए मर गया, तब इब्राहिम ने जान लिया कि उसे अकेला ही आगे यात्रा पर जाना है, और फिर वो अपनी पत्नी सारे और अपनी भतीजे लूत और दासों को लेकर आगे बढ़ गया। और तब वे उस देश की यात्रा पर निकल पड़े जिसे दिखाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। कसदियों के ऊर क्षेत्र से हारान को जाने का अर्थ था कि वे उत्तर पश्चिम में कोई 600 मील की यात्रा कर रहे थे। शेकेम में कनान देश हारान से लगभग 400 मील दूर था, जहां अंततः उन्हें अपनी यात्रा समाप्त करनी थी। परंतु इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कसदियों के ऊर की यात्रा करना आरंभ कर दिया था। वे अपने पिता के साथ ठहरे थे, तभी हारान में उसके पिता ने कहा होगा, देखो ये स्थान तो बहुत अच्छा है, क्यों ना हम इसी क्षेत्र में बस जाएं? ये तो बहुत बढ़िया है, फलदायक भूमि और उत्पादन के लिए उत्तम है। इस प्रकार परमेश्वर की मूल बुलाहट के विरुद्ध तेरा की आत्मिक पतन हो गया, अर्थात उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। और हो सकता है कि स्तिफानुस इस गहनात्मक बात को बता रहा था कि इब्राहिम ने जान लिया कि जब उसके पिता को पीछे छोड़ना है और परमेश्वर की बुलाहट की आज्ञा मानकर विश्वास में आगे बढ़ते जाना है, इसलिए जिस देश को दिखाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी वो उस देश की ओर चल पड़ा था। इसलिए यदि वर्षों का, आयु का कुछ हेर फेर दिखाई दे तो आप अपने विश्वास से पीछे न हट जाएं, क्योंकि हारान तेरा इब्राहिम की आयु के हिसाब लगाने के तरीके भिन्न हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर की बुलाहट अटल बनी रहती है। इब्राहिम इसका जीता जागता प्रमाण है।